ಸಾಗರ ಸುನೇಹಿತೇಶಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೇ ನಿರತ ನಿತ್ಯ ಹಿತೋಪದೇಶಿ ವೇ ಪಾಪ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಮೇ ಜಲ ಸಯಾನಿ ಪೂಜೋಧಿ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನಿ ಪೂಜೋಧಿ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನಿ ಬೋಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀ आचार्य कुंदकुंद स्वामी की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता आत्मज्ञान और सदाचार अपने जीवन में आना बहुत जरूरी है ये समझा है। और हमने दृष्टि की निर्मलता कैसे प्राप्त करें इस बात पर विचार भी किया है। हम पिछले दिनों से लगातार दृष्टि की निर्मलता के साथ आत्मा का ज्ञान हो ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मज्ञान जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत है, जैसा स्वरूप है वैसा अगर जानने में और अनुभव करने में आता है तो उसको आत्मज्ञान मानते हैं। अपन सामान्य रूप से कहें कि जो ज्ञान हमें संसार से मुक्त करे, हमें वीतरागता के मार्ग पर ले जाए, हमारा कल्याण करे, हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करे, प्राणी मात्र के कल्याण की हमारे भीतर भावना उत्पन्न करे, इतनी सब बातें जिस ज्ञान के हासिल करने पर हमें प्राप्त हो, वास्तव में वो सच्चा ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ई परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। जन्म मरण और बुढ़ापे की जो पीड़ा यहां हम संसार में रह करके निरंतर सहन कर रहे हैं उससे हमें जो मुक्त करे ऐसा ज्ञान ही सुख का कारण है। बाकी तो जो राग द्वेष से समन्वित ज्ञान है जो हमें संसार के प्रपंच में पंचेंद्रिय के विषय और भोगों में फंसा देता है, उलझा देता है, उस ज्ञान को समीचीन ज्ञान नहीं कहा। वो तो सिर्फ भौतिक ज्ञान है, वो वितराग विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान से संपन्न जो ज्ञान है वही वितराग विज्ञान है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। असल में ऐसा ज्ञान ही आचरण में तब्दील हो जाता है और वास्तविक ज्ञान वही है जो कि हमारा आचरण बन जाए। आप हमारा जो ज्ञान है जो राग द्वेष से समन्वित है वही हमारा आचरण बन गया। कितना सारा तो जानते हैं हम संसार के बारे में लेकिन अपने बारे में उतनी बेखबर है। हम अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में उतने अंधे हैं भले ही दो आंख वाले हों। ऐसा कभी अपने मन में विचार आता है? हम कितने ही पढ़े लिखे हों लेकिन हम अभी आध्यात्मिक रूप से निरक्षर ही हैं। हमारे भीतर वीतरागता का भाव ही उत्पन्न नहीं होता दिन भर में क्षण भर के लिए भी कि अपने स्वरूप की तरफ भी जो दृष्टि अपनी जाए ऐसा ज्ञान अपने भीतर उत्पन्न हो। ज्ञान हमारे काम नहीं आ पा रहा। जो वितराग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं वो उस वितरागता का अनुभव नहीं कर पाते, उस ज्ञान को भी समीचीन आत्म कल्याण के लिए हितकारी नहीं माना। जो भौतिक ज्ञान है वो तो संसार के ही लिए कारण है, लेकिन अगर आपने सिर्फ पोथी में चार कषायें नहीं करना चाहिए, मिथ्यात्व से बचना चाहिए और पांच पापों से बचना चाहिए ये भर पढ़ लिया, लेकिन आपने चार कषायें भी की और घोर मिथ्यात्व के कार्य भी किए और पांच पापों में भी संलग्न रहे, तो आपके ज्ञान का औचित्य क्या है, आपके ज्ञान का फल क्या है, ये आचार्य भगवान पूछते हैं अपन से। और अपन भी अपने आप से पूछे कि मेरी जानकारी का मेरे लिए लाभ क्या मिला। ये तो ठीक वैसा ही होगा कि एक बेटा अपने घर के सामने बैठा रहता था, स्कूल विस्कूल नहीं जाता था, कुछ पढ़ता लिखता भी नहीं था, घर का काम भी नहीं करता था, एक काम जरूर करता था, वो जितनी गांव में गायें चरने के लिए जाता था उनकी गिनती लगाता, इतनी गायें जंगल में चरने के लिए गई, सबका हिसाब रहता था उसके पास, बड़ा माहिर था गणित में, कौन से वाले गायों को गिनने के गणित में, तो सब गायों को गिनता। अब शाम को उसके माता पिता कहते कि भैया भोजन कर लो, कहते ठहरो अभी आ रहा है, अभी लौटने दो तो सब गायें, उनकी गिनती पूरी हो जाएगी तब तो मैं भोजन करूंगा। तो सब गायें लौटने का इंतजार करता, सबका मिलान करता कि इतनी गई थी इतनी लौटी। अब एक दिन ऐसा गड़बड़ हो गया कि दो तीन गायों के लौटने में देर हो गई, अब उसका हिसाब नहीं मिल रहा, गई तो हती 100 और लौटी 97 है, अब बड़ा कैलकुलेशन। अब उसके फादर मदर कह रहे हैं कि रात होने वाली है भोजन तो कर लो। जब उसने कहा कि मैं तो हिसाब पूरा मिला लूं, तो उसके पिता ने अत्यंत दुखी होकर के कहा कि दूसरे की गायें गिनते गिनते अपना जीवन पूरा कर दिया, अरे अपनी एक गाय ले लेते तो उसका दूध भी पीने के लिए मिलता, इन दूसरे की गायें गिनने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। ऐसे ही अपन जो प्रयोजनभूत आत्म तत्व है जिनसे अपना कल्याण होना, उनकी जानकारी उतनी नहीं रखते, दुनिया भर की जानकारी अपने को, सारा कैलकुलेशन अपने को, क्या इस ज्ञान को अपन समीचीन मानेंगे? विचार करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो समीचीन है या नहीं है, वो निर्णय आपके ऊपर है, आप स्वयं विचार करके देखें कि क्या मैं जो ज्ञान हासिल कर रहा हूं उस ज्ञान से मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, या कि सिर्फ संसार की भौतिकता ही प्राप्त कर रहा हूं, या संसार में उलझन ही पैदा कर रहा हूं। तो अपन देखते हैं कि हमने अपनी जानकारी का अपने जीवन के कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया, हमारे काम में नहीं आती वो, हम जानते तो बहुत हैं लेकिन हम जीते अज्ञानते में ही है, ज्ञान की बातें जानने के बाद भी। ये अपन ने कल समझा था, असल में होता क्या है, होता ये है कि ज्ञान की बातें हमारे सिर में तक रहती, हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती। जैसे कि अपन बहुत सारे फूल खरीद के लाए और घर में उनको ऐसे ही ढेर लगा करके डाल दें, क्या होगा, एक आध दो दिन में जिन फूलों से सुगंध आती थी, जो फूल अच्छे लगते थे, अब वो सड़ गए, फेंकने लायक हो गए, उनसे बदबू आने लगी, तो उठा करके वो दो तीन दिन के बाद घूरे पर कचरा घर में फेंक दिया। कोई व्यक्ति जो ढेर लगाता फूलों का, उसी में से तुरंत के तुरंत उस फूल में, फूलों में धागा पिरो करके माला बना लेता है और गले में धारण कर लेता है। अब उन फूलों से सुगंध आना भले ही बंद हो जाए, लेकिन गले में पड़ी हुई माला सूख भी जाने के बाद भी सड़ती नहीं। हमने उनको एक माला में पिरो लिया है फूलों को, अब वो सड़ेंगे नहीं। और अगर इससे भी ज्यादा कोई होशियार हो और होशियारी करे, तो ढेर सारे फूलों में से उनका सत निकाल करके एसेंस की तरह वो छोटी सी डिब्बी में वो पॉकेट में रख ले, जब चाहे तब कहीं पर बदबू आ रही हो तो सुगंध प्राप्त कर सकता है। अपने साथ भी यही है, ढेर सारा ज्ञान है फूल के ढेर की तरह, जो कि दो चार दिन में आउट ऑफ डेट हो जाता, सड़ जाता है, फेंकने लायक हो जाता है। ज्ञान की ढेर सारी बातें अच्छी अच्छी अपने पास हैं, लेकिन अपन उनको ऐसे ही ढेर लगा के रख देते हैं, उससे लाभ नहीं ले पाते उन अनुभवों से, उस ज्ञान से। और अगर उसको सिस्टमैटिकली एक माला में पिरो करके धारण कर ले तो भी ठीक है, और अगर उससे भी बढ़िया कर पाए तो चाहे स्वाध्याय करें, चाहे वचनिका करें, चाहे प्रवचन में बैठें, मेरे उपयोग के लिए कौन सी चीज है जो मैं उसमें से तुरंत ग्रहण कर लूं, उसके रहस्य को, उसके मर्म को, उसके एसेंस को, जो कि रिलेवेंट है, जो सारभूत है। तीन लोक में सारभूत तो एक ही चीज है, वीतराग विज्ञानता, वही मैं ग्रहण कर लूं और उसे अपने पॉकेट में एसेंस की तरह रख लूं। जब राग द्वेष के विकल्प उठने लगे, सुख और दुख में हर्ष विषाद होने लगे, तो फौरन निकाल करके चॉकलेट की तरह उनका उपयोग कर लूं और अपने जीवन में फिर से वीतरागता का क्षण भर को ही सही अनुभव कर सकूं। ऐसा ज्ञान है अपने पास, अभी चाहिए अपने को है नहीं, अभी तो पोथी का ज्ञान है अपने को, अभी तो संसार की बातों का ज्ञान है, और बढ़िया से बढ़िया चमत्कृत करने वाला ज्ञान है। अगर कोई से संसार के बारे में जो अजूबा है वो पूछा जाए और बता दे वो, अरे वाह बहुत ज्ञानवान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब बातें जानते, अपन फौरन पढ़े लिखे और ज्ञानवान होने का लेवल लगा देते हैं। लेकिन जरा तो विचार करें कि जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो कि मोक्ष का मार्ग है, उसका काफला नहीं मालूम, उसे हम ज्ञानवान कह सकते हैं? जो आत्मा और देह को एक ही मानता है, ऐसे बहिरात्मा को अपन ज्ञानवान कह सकते हैं? विनोबा ने अपने गीता प्रवचन तक में लिखा कि जो देह और आत्मा को एक ही मानता है, उसके जीवन में कितना भी धर्म कर ले वो क्रियाओं में हो सकता है, लेकिन जीवन में नहीं आ सकता। धर्म उसी के जीवन में शुरू होता है जो कि सबसे पहले देह और आत्मा को जुदा जुदा मानता है। ऐसे भेद विज्ञान से संपन्न है, सम्यक दर्शन से संपन्न है, उसी व्यक्ति के जीवन में धर्म की शुरुआत हो सकती है, उसका ज्ञान ही सार्थक है। अपन ऐसा विचार करें, और ऐसे विचार के साथ ही जो भी ज्ञान अपन हासिल करते हैं वो अपने आत्म कल्याण के लिए है, ऐसा मान करके उसका अभ्यास करें। ज्ञान के अभ्यास करते समय जैसे सम्यक दर्शन के साथ आठ बातों का ध्यान रखते हैं अपन, कि निशंकित हुआ कि नहीं, निकांक्षित हुआ कि नहीं, मेरे अंदर निर्विचिकित्सा आई कि नहीं, मेरे अंदर विवेक आया कि नहीं, दोष देखने की प्रवृत्ति मेरी गई कि नहीं, दूसरे को सच्चे रास्ते पर धक्का देने की जगह संभालने की प्रवृत्ति आई कि नहीं, प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में वात्सल्य आया कि नहीं, अपने जीवन में रत्नत्रय के तेज को स्वयं धारण करके और जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना करने का मेरा मन है कि नहीं। जैसे इन आठ बातों का अपन विचार करते हैं अपने भीतर दृष्टि की निर्मलता के लिए, ऐसे ही आत्मज्ञान के लिए भी आठ बातें आचार्यों ने कही, जिनका कि अपन ज्ञान करें, जिनके माध्यम से अपने ज्ञान को कसौटी पर कस करके देखें कि ये ज्ञान जो मैंने हासिल किया है मेरे कल्याण में निमित्त बनेगा कि नहीं, या कि सिर्फ संसार में ही कारण बनेगा। संसार में कारण बनने वाले ज्ञान को हासिल नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहा, लेकिन संसार में फंसाने वाले ज्ञान को हासिल करने से होगा क्या? जो संसार से मुक्त ना कर सके उस ज्ञान का औचित्य क्या है? और वो ज्ञान अभी मेरे पास नहीं है तो मेरे जीवन का औचित्य क्या है? मेरे जीने का औचित्य क्या है, जरा विचार करें अपन। मुझे वो ज्ञान हासिल ही नहीं है जो मुझे मुक्त कर दे, जो मुझे संसार के प्रपंच से, संसार की उलझनों से बचा ले। मुझे तो सब सारा ज्ञान संसार में उलझाने वाला ही है, राग द्वेष में और पांच इंद्रिय के विषयों में लगाने वाला है। नहीं, ये ज्ञान समीचीन नहीं है, ऐसा मैं अपने भीतर स्वयं विचार करके और ऐसे ज्ञान की तरफ प्रवृत्त हूं जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं, मेरा निमित्त पाकर के और भी जीव चाहे तो अपना कल्याण कर सकें। आठ बातें, उसमें से सबसे पहले आता है कि हम ठीक ठीक से उच्चारण करें ज्ञान का, ज्ञान की बातों का। उच्चारणाचार, ठीक ठीक शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध पाठ करना हमसे बनत नहीं है। इसे हम तो संस्कृत को नहीं पढ़ा, हिंदी को भक्तांबर पढ़े लेते, ये वही है। ज्ञान की विनय क्या हुई जरा विचार करें, ये तो बचने का उपाय हो गया, अल्टरनेट्स हो गए। कल के दिन कहेंगे कि मुझे दर्शन नहीं मिले, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, हो गए दर्शन। ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं इन चीजों के, सच्चे देवगुरु शास्त्र का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई अल्टरनेट हो सकता है? संभव नहीं है, लेकिन अपन उनका भी अल्टरनेट, उनका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगे। विचार करें कि जो चीज जिस तरह मेरे आत्म कल्याण के लिए कही गई है उसका ठीक ठीक उच्चारण तो करूं। मैं कटनी में गर्मी के दिन में था और सामायिक में 12 बजे बैठ जाता था, लेकिन 12:30 के लगभग एक अम्मा जी वहीं पास में, मंदिर में ही बैठता था तो वहीं पास में, और अलमारी रखी थी शास्त्रों की, वहां आकर के अलमारी में से शास्त्र निकालती हूं, पढ़ना शुरू कर देती। हमारे मन में बहुत विचार आया कि पूछें तो कि इतनी 70 साल की हुई है कम से कम अम्मा जी, क्या पढ़ती हैं। तो एक दिन जब वो सामायिक के बाद अपना स्वाध्याय भी उनका पूरा हो गया, मेरे सामायिक के बाद उनने आकर के नमोस्तु कहा, तो सहज रूप से प्रश्न हमने उनसे पूछ ही लिया कि अम्मा जी आप किस बात का, किस ग्रंथ का स्वाध्याय करती हैं। तो बड़ी विनय के साथ उन्होंने कहा कि महाराज जी हम तो अज्ञानी हैं, हम का स्वाध्याय करेंगे, हमें कछु समझ में थोड़ू आते, मनो हम स्वाध्याय कर रहे धबला जी का, बताओ आप। हमने कहा अरे जब आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसको पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा। महाराज मैं तो ये सोच करके कि मेरे कल्याण के लिए जब मेरे ऊपर उपकार करके आचार्य भगवंतों ने इतनी मेहनत करके लिखा है तो मैं उसको अपनी आंखों से देख भी ना पाऊं, अपने इस मुख से जो कि दुनिया भर के शब्द उच्चारण करती हूं, मैं अपने मुख से उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी कर लूं, इन कानों से मैं सुन तो लूं वो ध्वनि, तो मेरे ये आंख कान सार्थक हो जाएंगे। मैं सिर्फ श्रद्धा के साथ इन ग्रंथों का पारायण करती हूं, मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता, बताओ भैया कल्याण हुई है कि नहीं हुई है। हो तो जाएगा, लगता तो ऐसे ही है उनकी विनय से। पढ़े लिखे ज्ञानवान जो भौतिक ज्ञान से संपन्न है वो एक बार पीछे रह जाएंगे, अपन उनको अज्ञानी कहेंगे कि देखो पढ़ो तक नहीं आऊ, समझ में तक नहीं आऊ तो पढ़ रहे, हम तो बहुत पलंता है, हमें तो बहुत अंग्रेजी तक आऊ। अरे भैया आत्मज्ञान की बात तो, श्रद्धा की बात तो अपन को आती नहीं है, ये अपना ध्यान ही नहीं जाता है। ठीक ठीक अभी अपन को ग्रंथों का जो अपने उपकार के लिए प्रयोजन भूत तत्व लिखे हैं उनका उच्चारण तक दिन भर में एक बार अपन नहीं कर पाते, कम से कम बूढ़े पुराने लोगों में आज ये तो संकल्प है कि 4 बातें पढ़ेंगे शास्त्र की, भले ही 5-6 हम तो कछु समझ में आऊ कछु नहीं आऊ धर दे बस, लेकिन मंदिर जाएंगे और 4 शब्द मेरे कल्याण के लिए जो लिखे गए हैं जिस दिन समझ में आ जाएंगे उस दिन वही कल्याण में निमित्त बन जाएंगे, लेकिन मैं उनका उच्चारण तो करूं कम से कम। पूरी श्रद्धा के साथ, ये कहलाता है। इसको व्यंजनाचार भी कह सकते हैं, उच्चारणाचार भी कह सकते हैं, जिसमें कि हम ग्रंथ जो हमारे कार्य के लिए प्रयोजनभूत लिखे गए, जिन वाणी कही गई उसका ठीक ठीक उच्चारण करते हैं, ठीक उच्चारण के लिए चिंतित होते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे शुद्ध उच्चारण नहीं होता। शुरू शुरू में जब 1980 में दीक्षा के बाद पहला दिन था, मेरे से प्राकृत भाषा का प्रतिक्रमण पाठ नहीं आता था। अब क्या करूं, जो महाराजियों को आता था घंटे भर पहले से उनके पास जा जाके, आप कब करोगे प्रतिक्रमण, आप बता देना हमें, जब प्रतिक्रमण करो तो हम भी सुन लें। इतनी ललक मुझे आता नहीं है, लेकिन जिनको आता है उनके चरणों में अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से बैठेंगे। ऐसी अपने भीतर ललक है क्या ज्ञान को आत्म कल्याण के लिए हासिल करने की? नहीं आउट तो हम कैसे कहें कि हमें नहीं आउट? हम अपनी अज्ञानता कैसे प्रकट करें और दूसरे को अपने से ज्यादा ज्ञानवान कैसे माने? उनके चरणों में बैठ के अपन शुद्ध उच्चारण कैसे सीखें? जी अहंकार अपने भीतर ज्यादा है बनस्पत इसके कि विनय पूर्वक अपन अपने कल्याण की बात जहां से भी दूसरे से भी मिलती हो तो उसे हासिल करें। इतना ही नहीं, जैसा उच्चारण किया है उसका जैसा अर्थ है, शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध उसका अर्थ निकालना। अगर ज्ञान है तो उसका समीचीन ज्ञान तभी कहलाएगा जब उस शब्द का जो अर्थ उस ग्रंथ में जैसा निकलता है वैसा निकाले, अपने मन का नहीं निकाले। अलग अलग ग्रंथों में इंटरप्रिटेशन आचार्य भगवंतों ने अलग अलग ढंग से किया है। जिसे परिग्रह परिमाण कहते हैं उसे ही समंतभद्र स्वामी ने इच्छा परिमाण नाम का व्रत कहा। क्या आशय है? ज्ञान दान की जगह उन्होंने उपकरण दान लिखा। क्या आशय है उनसे समझे? कुंदकुंद आचार्य महाराज ने दर्शन शब्द का अष्टपहर में क्या अर्थ लिया है, मैं वही अर्थ निकालूं? वैसे तो दर्शन मतलब देखना भी होता, सर्वार्थ सिद्धि में आप पूछपा स्वामी के चरणों में बैठेंगे तो दर्शन का अर्थ दृश्य धातु से बना हुआ है तो देखना भी आता, और दर्शन का अर्थ प्रशंसा भी है श्रद्धा भी है, तो सम्यक दर्शन में जो दर्शन है वो श्रद्धा के लिए है। कई अर्थ होते हैं दर्शन के, और दर्शन का अष्टपहर में अगर अर्थ निकालेंगे कुंदकुंद आचार्य महाराज के चरणों में बैठकर तो वहां दर्शन का मतलब होता है वीतराग मुद्रा का दर्शन करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जिसने अंगीकार कर लिया है उस मुद्रा का दर्शन करना ही वास्तव में दर्शन है। और दर्शन का अगर आप कॉलेज में जाकर के पढ़ेंगे तो फिलॉसफी अर्थ है, आप शब्द दर्शन पढ़ लेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ लेंगे, लेकिन किस जगह अप्रोप्रिएट अर्थ किस ग्रंथ में क्या निकाला गया है वो निकालने की क्षमता जिसके भीतर है, उसके भीतर ही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो उसके कल्याण के लिए है वो आ सकता है। तो व्यंजनाचार और अर्थाचार दोनों चीजें जहां समन्वित होकर के आती हैं उसे ही उभयाचार कहते हैं। तीसरी ज्ञान की सम्यक ज्ञान के लिए आवश्यक चीज है, गुण है, दोनों चीज आनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी और उस संदर्भ में क्या अर्थ निकाला गया उस शब्द का, ये दोनों चीजें आती हैं तो उसे उभयाचार बोलेंगे, जिसमें शुद्ध उच्चारण भी है और अर्थ भी शुद्ध है। नहीं तो भैया शुद्ध अर्थ तो नहीं आता, हमें उच्चारण तो बहुत अच्छा आता। तो किसी ने अगर भोजन करते समय सेंधव मांगा तो सेंधव का अर्थ तो घोड़ा भी होता और नमक भी होता। मैंने भोजन करते समय मांगा है तो नमक ही लिया है कि घोड़ा खड़ा कर दें लैन के, जी बताओ आप। उस अर्थ उस शब्द के तो अर्थ कई होते हैं, लेकिन उस संदर्भ में क्या अर्थ निकलेगा ये अपने लिए जानकारी होनी चाहिए तो व्याचार कहलाएगा। इतना ही नहीं, कालाचार किस समय में अध्ययन करूं? हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन करो जब स्कूल की घंटी बजे, जब ही पढ़ने पड़े, नहीं हम तो जब चाहे तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। जो समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने दिया हुआ है उसी समय पर पढ़ेंगे, सामायिक के समय पर अकाल में स्वाध्याय नहीं करेंगे। ज्ञान की बातें जो आत्म कल्याण करने वाली हैं वो कब सीखनी चाहिए, ये हमारे भीतर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम काल की अपेक्षा से भी कब स्वाध्याय करना कब नहीं करना ये जानकारी रख करके ही स्वाध्याय करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे अभी देख रहे थे कि चार जने बैठ गए वचन का कर रहे हैं और हो गया प्रवचन का समय, मंगलाचरण चल रहा हो, लेकिन हमें तो अपनी वचन का चार जनों की चल रही हो टकल के नीचे बैठे बैठे, ये क्या हो गया? ये विनय है ज्ञान की, स्पष्ट अपनी अज्ञानता को ऐसे ही दूर कर पाएंगे अपन? अपन सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महाराज जी देख ले हैं कि देखो अभी तक पल रहे जी, लेकिन ग्रंथ में क्या लिखा है कि जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरे उस समय में सिर्फ हमें सामायिक करनी चाहिए जो कि संध्या काल है। उस समय अगर हम तीर्थंकर की वाणी को पढ़ते या कि प्रवचन इत्यादि के समय जो कि तीर्थंकर की वाणी कही जा रही है उसकी जगह अपने मन से कुछ चर्चा करने लगते हैं या कोई और ग्रंथ पढ़ने लगते हैं तो वो दिव्य ध्वनि का तीर्थंकर की वाणी का अभिनय है। लेकिन अज्ञानतावश अपन इस तरह से सोचते तो यह है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश पाप का ही बंद कर लेते। हम शुरू में सोचते थे कि आचार्य श्री पढ़ा रहे हैं, हम कछु बात कोई से पूछ रहे हैं तो मैं कागज पर है, लेकिन आचार्य श्री मना कर देते थे, नहीं चुपचाप सुनो क्या कह रहे हैं। फिर जब स्वयं लोग हमसे सुन रहे हैं कोई चीज हो फिर आपस में बात करने लगे तो कैसा लगता है? फिर करे हम तो इतने कैद जा रहे उदी हो रहे आपस में सटे बात कर रहे, अभिनय लगती है कि नहीं? अपनी भी और जो स्वाध्याय किया जा रहा है उसकी भी। ये विवेक की बात है कि मैं गद्दी पर शास्त्र आ जाने के बाद मौन धारण करके उस शास्त्र में मेरे कल्याण के लिए क्या लिखा है तत्परता पूर्वक उत्सुकता पूर्वक बैठूंगा। अब काल आ गया स्वाध्याय का, मैं स्वाध्याय को सुनूं। जब करने स्वयं बैठूं तो अकाल में ना करूं, ठीक ठीक समय पर स्वाध्याय करूं। सामायिक के समय पर मैं ग्रंथ खोल करके न बैठूं, अभी तो पंच परमेश्वरी का स्मरण करने का समय है। वैसे तो पंच परमेश्वरी का स्मरण करने का 24 घंटे समय है, लेकिन संध्या काल में विशेष रूप से पापकारी छोड़ करके और आचार्य भगवंतों ने भगवान के गुणगान करने के लिए कहा, सामायिक करने के लिए कहा। अपने बुंदेलखंड में भी लोग कहा करते थे अपन को, तो भैया बचपन में कहते थे कि भैया सीधे बैठो, उपद्रव न करो, खटकर्म न करो, भगवान को स्मरण करो। तो हम अब सोचते हैं कि वे षटकर्म क्या थे, खटकर्म? वो षटकर्म असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, यानी संसार के कार्य छोड़ करके परमात्मा का स्मरण करो, ये संध्या काल है। दो ही विड़ियां हो गई अर्थात संध्या काल आ गया, ऐसा काल का ध्यान रखते थे। ऐसे ही काल को ध्यान में रख करके ही अपन प्रयोजनभूत अपने लिए उपकार करके जो जिनवाणी कही गई उसका स्वाध्याय करें तो ये कालाचार कहलाएगा। इतना ही नहीं विनयाचार, पूरी विनय के साथ स्वाध्याय करें, पूरे आदर के साथ स्वाध्याय करें। नहीं कांकरी में दबा के ले आए ग्रंथ, धरो तुम्हारे बैठे सब जन हम सुना रहे हैं, जो होगा स्वाध्याय। आपने विनय ही नहीं की, सिर माथे पर लेकर के ग्रंथ आते थे विराजमान करते थे फिर ढोक दे करके अब स्वाध्याय शुरू करते हैं। शास्त्र की गद्दी पर बैठने वाला शुद्र वस्त्र धारण करता था, 15-15 दिन के धुले और वस्त्रों का उपयोग शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके नहीं करेंगे। शास्त्र को स्पर्श करेंगे तो जैसे कि भगवान जिनेंद्र को अभिषेक के समय शुद्ध वस्त्र पहन के स्पर्श करते हैं वैसे ही शास्त्र की विनय करेंगे, सिर माथे पर चढ़ाएंगे। ये तो बाह्य विनय हो गई, और अंतरंग में उस शास्त्र में जो बातें कही गई हैं मेरे कल्याण के लिए कही गई हैं उनमें संदेह नहीं करूंगा। ठीक लिखा हुआ है, मेरी बुद्धि कम है, मुझे समझ में कम आता है, नहीं कह लिखो कैसे लिखो गलती चलती लिखो, ऐसा नहीं बोलूंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि कम है, इस तरह का भाव अपने भीतर आएगा। ऐसा भाव नहीं आएगा कि जिन वाणी में क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म जिनोदितम तत्त्वं हेतु विर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तदग्राह्यं अन्यथा वादिनो जिना। दिनेन्द्र भगवान अन्यथा वादी नहीं होते, सूक्ष्म है उनके द्वारा कहा गया आत्म कल्याण के लिए जो तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता, लेकिन उसको कोई भी लॉजिक दे करके काट नहीं सकता। हेतु विर नैव हन्यते, इसलिए आज्ञा सिद्धं तदग्राह्यं, मेरे लिए तो जैसा जयेंद्र भगवान ने आज्ञा दी है उसे मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा भाव अपने भीतर आए तब विनय कहलाएगी ग्रंथ की। अकेले ऐसा नहीं कि बैठ गए सुनाओ बाचो का लिखो है, मैं वो कन्ने धन्ने कछु नहीं है, सुन करके चले गए। इसमें विनय अपनी इतनी तो रही कि अपन ने शास्त्र की अभिनय नहीं करी, लेकिन शास्त्र की बातों को नहीं मान करके अपन ने जो शास्त्र की अभिनय करी है क्या वो अभिनय नहीं है? कितनी बातें अपने कल्याण के लिए कहीं, उसमें से कितनी मानते हैं अपन, क्या विनय है अपने भीतर, ये विचार करना चाहिए। रिस्पेक्ट अपने, सुन भी रहे हम तो सुन रहे हैं, महाराज तो सुना रहे और अपने बाचत भी जा रहे कछु, कई जने तो प्रवचन भी सुन रहे और पीछे बैठे बैठे अपनी किताब भी बांच रहे, कौन काम की हुई ये बात तो सुन ले, मनो हम अपनी किताब बांच रहे। ले जी कौन सी बहुमान है भाई, ये समझ में नहीं आया। अपने आपस में गप्पा सप्पा में सटे हुए, या यहां वहां से कौन आया कौन गया, अब भी अगर कहीं कोई थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी सभा का ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, जो आत्महित के लिए बात कही जा रही उस तरफ ध्यान नहीं रहेगा। यही बहुमान है अपना। कैसे आए ज्ञान, अपन स्वयं विचार करें कि मेरे भीतर ज्ञान क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि मैं उसे विनय पूर्वक बहुमान पूर्वक धारण नहीं करता हूं, इसलिए मुझे वो ज्ञान आ नहीं पाता, आता भी है तो मेरा कल्याण नहीं कर पाता। तो मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक संसार में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी सिर्फ अपने कल्याण के लिए जो प्रयोजनभूत सात तत्व हैं उनको सुन रहा हूं। आध घंटे 10 मिनट 5 मिनट जितनी देर में अपना स्वाध्याय करूंगा उतनी देर मैं दीन दुनिया से बेखबर होकर के करूंगा पूरे एकाग्रता के साथ। ये बहुमान आचार्य कहलाएगा। उपधान जिसमें कि हम कोई ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं, उससे ज्ञान हासिल करना शुरू करते हैं, तो अपने पंचेंद्री और मन के विषयों में से कोई ना कोई चीज का त्याग करते हैं कि जब तक मैं शास्त्र को सुन लिया पढ़ नहीं रहूंगा तब तक मेरा फलानी वस्तु का त्याग रहेगा। ये उपधान कहलाता है। त्याग पूर्वक ही मैं अपने आत्मा के कल्याण का ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्योंकि ज्ञान तो चारित्रवान को ही शोभा देता है। चारित्रहीन के हाथ में अगर ज्ञान जाए तो अंधे के हाथ में लालटेन के समान है, ये अपन पहले दिन समझ चुके थे। तो मैं ज्ञान हासिल करूंगा तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में डिसिप्लिन तो रखूंगा, कुछ ना कुछ तो मर्यादा अपने जीवन में बनाऊंगा जब तक कि मैं इस ज्ञान को हासिल करूंगा। और आखिरी चीज अनिन्नव, मैं ज्ञान प्राप्त करते समय शास्त्र का और गुरु का नाम नहीं छिपाऊंगा, अन्यथा मन में ये आई जाता है कोई पूछे कि भैया जा चीज तुम्हें कैसी बड़ी बढ़िया मालूम, हमने अपने आप स्वाध्याय करके निकाली है, कौन से ग्रंथ में से, जा तो नहीं है ख्याल के कौन से ग्रंथ में से है, कौन ने बताई ये भी नहीं मालूम, छिपाना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु का नाम बता देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे गुरु बड़े हो जाएंगे। तो गुरु का नाम छिपा लिया, शास्त्र का नाम, और शास्त्र का नाम अगर बताऊंगा तो और लोग भी पढ़ लेंगे और वो भी ज्ञानमान हो जाएंगे। ऐसे भैया शास्त्र का तुम्हें पता नहीं है, ऐसा शास्त्र का नाम छिपा लिया। सेल्फ स्टडी से ही मैंने नॉलेज गेन किया है, इस तरह का जो भाव अपने भीतर आ जाता है विदाउट एनी सपोर्ट, हमारे लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी, हमने स्वयं ज्ञान हासिल किया है, हमारा स्वरूप सम इस तरह का है, ऐसे अहंकार पूर्वक ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। कम से कम जो कि आत्म कल्याण में सहयोगी ज्ञान है, और तो ज्ञान हो सकता है, अहंकार पूर्वक भी होता है और ज्ञान के बाद भी अहंकार आता है, आ सकता है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए जो ज्ञान अपन हासिल करेंगे वो विनय पूर्वक ही और विनय देने वाला भी है। आचार्य महाराज सुनाते हैं, वो घटना आपको बता दूं इस अनिन्नव के बारे में, छुपाना नहीं चाहिए अपने गुरु का नाम, एक अक्षर भी आ अनार का भी जिस गुरु से सीखा है उसका स्मरण, उसका उपकार अपने ऊपर महसूस होता रहे कि हम तो गैर पढ़े लिखे थे लेकिन हमें कृपा करके गुरु ने निमित्त बन करके और हमें भले ही हमारे उपादान में ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता थी लेकिन निमित्त तो गुरु का मिला तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा भाव अपने भीतर विनय का बना रहे तब अपन आत्म कल्याण कर सकते। एक बार आचार्य महाराज ने सुनाया था कि एक मुनि महाराज जी थे, भैया निंदा नहीं कर रहे, मुनि महाराज जी के मन में ज्ञान हासिल करने की बहुत ललक थी, सो वाकई में उनका शयोपसम उनकी तपस्या से इतना बड़ा कि गुरु जी से ज्यादा जानने लगे। अपन कहते ना कि चेला शक्कर और गुरु जी गुड़, गुरु जी तो पीछे रह गए, चेला तो और ज्यादा ज्ञानवान हो गया, तो सब जने बड़ी प्रशंसा, अरे आप तो बहुत ज्ञानवान है, आप तो बहुत ज्ञान, तो फूल के कुप्पा हो गए जैसे हो जाते अपन। तब ने कही कह दो कोई से कि तुम तो बहुत पढ़े लिखे बहुत ज्ञानवान हो भैया, तो अपन फौरन अहंकार पूर्वक और अपने भीतर क्या फिर आता है भाव, सब अज्ञानी है, सबका तिरस्कार किया जाए, मेरा ही विशेष सम्मान हो, इस तरह का अहंकार अपने भीतर आ जाता है। वो उन मुनिराज के अंदर भी आ गया कि मैं तो अपने गुरु से भी श्रेष्ठ हूं ज्ञान में, तो जब उनसे लोग पूछते कि इतना बढ़िया ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया, आपके गुरु कौन है, तो कहते कि मैं तो स्वयं ही दीक्षित हूं और मैंने स्वयं ही ज्ञान अपने सर्वसम से हासिल किया है, गुरु का नाम नहीं बताया उनने, जो पूछता उसको ही इसी तरह का जवाब। कुछ ही दिन हुए, महीने भर 15 दिन, और उनका कुंदन के समान चमकता हुआ शरीर निस्तेज हो गया, काला पड़ गया, देखते देखते उनको लेकिन विवेक आ गया कि अरे मैंने तो अपने गुरु का नाम छिपा के अच्छा नहीं किया, भले ही मेरे पास ज्ञान है लेकिन गुरु तो गुरु ही है, परम गुरु तो अनंत भगवान है, सारा ज्ञान उन्हीं के द्वारा आया है, मैंने उनका ही नाम छिपा लिया। ऐसा उनके भीतर जैसे ही भाव आया और अत्यंत विनय पूर्वक अपने गुरु का अपनी परंपरा का वो नाम उल्लेख करने लगे कि भैया मैं तो कुछ जानता नहीं था विशेष, मुझे गुरु की कृपा से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा कहने मात्र से 10-15 दिन के बाद उनका जो निस्तेज शरीर था फिर तेजवान हो गया, चमकने लगा। उसी एक जीवन में ये दोनों स्थितियां उनके बनते हुए देखी गई। भैया अपन थोड़ा सा भी ज्ञान जो अपने कल्याण के लिए अपन ने प्राप्त किया है, जिससे प्राप्त करें कभी अपने मन में उस शास्त्र को या कि उस जिससे गुरु से हासिल किया तो उसका नाम छिपाने का मन ना में भाव ना उत्पन्न हो, तो ही अपना ज्ञान इन 8 बातों से समन्वित होकर के अपने आत्म कल्याण के लिए और अपने निमित्त से प्राणी मात्र के आत्म कल्याण में निमित्त बन सकता, इसी भावना से कि इन 8 बातों से युक्त ज्ञान हमें भी प्राप्त हो और हम भी अपना आत्मा का कल्याण कर सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब मेरा कछु कछु का गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पद में विषकंटक बोता हूँ।
वो अर्ध निशा का सन्नाटा बन में बनचारी चरते हूँ,
शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल बरसा की घड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फुल झड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़ खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया,
दिन रात लुटाया करते वो शम शम की अविनश्वर मणिया।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
उदक चंदन तंदुल पुष्प के चारु स्वदीप सुधूपल अर्घ के, धवल मंगल गान रवाकुले जिन कहे जिन नाथ महं यजे। ओम री परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण कमलों में आनर पर प्राप्त स्वर्गम। ओम भी श्री 108 मुनि क्षमा सागर जी महाराज, 108 मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के चरणों में अर्गम पांती स्वाहा।
नित्यतम नाश विकु ज्ञान के प्रकाश विकु आप पर वास विकु भानु शिव कानी है,
छो द्रव्य जान विकु बंद विधि भान विकु स्वपर पिछान विकु परम प्रमाणी है,
अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काऊ न सताए वेखो भव्य उर आनी है,
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है,
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू,
हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे
सुख सुविधाओं पर उनके लिए सरसों का दाना भी चुभता था। आंसू आ गए थे जब उनकी दीप से आरती उतारी गई, जब उनको खाने के लिए चावल रखे गए तो उसमें से चुन चुन करके जो मुलायम चावल थे, शाली धान्य थे, उन्हें ही उन्होंने खाया। तो राजा के मुंह से निकल गया कि अपने बेटे का तुम इलाज करवाओ रानी मां, तुम्हारा बेटा तो अस्वस्थ लगता है। केलनी अस्वस्थ नहीं है, सुकुमाल है। लेकिन एक समय वो आया जब उनके ही पिता जो मुनि बन गए थे सुबह से भगवान की स्तुति में कुछ पद पढ़ रहे थे, उन पदों की ध्वनि उनके कान में सुनाई पड़ी और दृष्टि बदल गई। और दृष्टि बदलते ही साथ धोतियां साड़ियां बांध करके खिड़की में से नीचे उतरे और नंगे पैरों से खून बह रहा है और चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुनि दीक्षा लेने के बाद 3 दिन तक एक स्यालनी अपने दोनों बच्चों के साथ पैरों का भक्षण करती रही, लेकिन कहां है उस तरफ ध्यान। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला था शरीर, चरम शरीरी थे उसी भाव से उनको मुक्ति हुई, उनका ध्यान आत्मा की तरफ चला गया। पहले उसी शरीर से और सरसों का दाना चुभ रहा था, कहां गई थी वो अनंत शक्ति? दृष्टि नहीं मिली थी, जैसे ही दृष्टि बदली वैसे ही शरीर में तो शक्ति थी, ऐसे ही अपने साथ भी है। अपने लिए भी व्रत नियम संयम करने की बहुत सामर्थ्य, अपना कल्याण करने की अनंत शक्ति है आत्मा के भीतर, लेकिन जब तक अपने भीतर सच्ची दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक वो सारी शक्ति अपने भीतर ही पड़ी है, अपन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। भैया कोशिश करना चाहिए अपनी दृष्टि को समीचीन बनाने का, जिससे कि अपने आप मोक्ष का मार्ग कैसा है ये सूझने लगेगा। बताने से समझने समझना ज्यादा जरूरी है, बताने और समझाने से कार्य नहीं होगा, हिसाब किताब से कार्य नहीं होगा, शर्त सहित नहीं होगा, कोई तर्क नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ अपने भीतर ऐसा विश्वास कि मेरे आत्मा का कल्याण मुझे करना है, इस तरह का विश्वास सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में बैठ करके अपने भीतर जागृत हो, वरना अपन तर्क वितर्क में ही पड़े रहते हैं। बहुत सारा ज्ञान उलझने वाला ज्ञान, तर्क वितर्क में उलझाने वाला ज्ञान भी अगर अपने पास हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वैसी दृष्टि वैसी निर्मलता अपन को प्राप्त हो जाए, जैसी कि सम्यक दर्शन के योग है। एक मास्टर साहब थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पढ़ाते भी थे बच्चों को, गणित के प्रोफेसर थे वो, बुरा नहीं मानना कोई गणित में प्रोफेसर वगैरह कोई बैठे हो अगर, तो वो थे मास्टर, इसलिए हमने मास्टर साहब कहा। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते थे, वो गणित पढ़ाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनने सोचा कि बहुत दिन हो गए, अब घर के सब बच्चों को जीवन साथी को भी पिकनिक के लिए चले, नदी के उस पार उनका मन हुआ कि पिकनिक के लिए चलेंगे। उनके गांव के बाहर से नदी बहती थी, वो ही पिकनिक का स्पॉट। वैसे पिकनिक शब्द अच्छा नहीं है, अपन लोगों ने प्रचलित कर लिया है, अंग्रेजी शब्द है पिकनिक और उसका हिंदी में अर्थ होता है वन भोज, जंगल में जैसे जंगली जानवर शिकार करके और चार पांच जने इकट्ठे खाने बैठ जाते हैं, उसका नाम है पिकनिक, जो अपन ने डेवलप कर लिया है। जंगल में किए जाने वाला जंगली जानवरों का भोजन है और कुछ नहीं, लेकिन अपन बड़े खुश होते हैं कि साहब पिकनिक पे जा रहे हैं। वो लोग भी पिकनिक पर जा रहे थे तो अब नदी के किनारे पहुंचे, नदी पार करना थी, अब पैसा को दे, पैसा तो थे नहीं, उनने की काय खो बेकार में पैसा खर्च करो, हमने इतनी गणित पढ़ी है कबे काम यहां है, हम देख लेते हैं नदी की गहराई कितनी है, अपन आसानी से निकल सकते कि नहीं, और सब लोगों की ऊंचाई कितनी है, क्लियर हो जाएगा कि भाई अपन डूबेंगे नहीं। सुनने सबकी हाइट नाप ली, उसका एवरेज निकाल लिया और जाकर के नदी जहां गहरी थी, कम गहरी ज्यादा गहरी सब नाप लिया, उसका भी एवरेज निकाल लिया, गणित में तो माहिर थी। तो जब उनका हिसाब निकला तो देखा कि नहीं, अपन सबकी मिला करके हाइट का एवरेज ज्यादा है, नदी की गहराई से चलो कोई नहीं डूबेगा, चले। अब जीवन साथी ने कहा कि वो छोटा सा जो 3 वर्ष का बेटा है उसकी तो कंधा तक पानी आ गया, क्या कर रहे हो तुम, तो कह रहे थे कि कोई नहीं डूबेगा। उनको भी बहुत लगा, कहने नहीं हमारा गणित गलत नहीं हो सकता, फिर से कर लेता हूं। उनने फिर से गणित लगाया, नहीं उस चिल्ला के कहा कि नहीं चले जाओ, सब जने चलते चलो, कोई हर्जा की बात नहीं, कोई नहीं डूबेगा, हमारा गणित बिल्कुल सही है। क्या स्थिति बनी, कुछ थोड़ी देर और चलने के बाद जहां गहरा पानी था वहां तो डूबने की नौबत आ गई। अपन भी कैसा करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं, उस पर तो हंसी आती है कि देखो तो उस गणित का क्या उपयोग हुआ, उस ज्ञान का क्या उपयोग हुआ जो कि संसार में डुबोने के लिए हमें अपना सहयोग करता है। बताइए, अपने पास भी कितना ज्ञान है, कौन सा ज्ञान जो कि हमें संसार में ही रुलाने के लिए, संसार में ही डुबोने के लिए कारण बनता है। अपने पास है थोड़ा सा ऐसा ज्ञान जो हमें संसार से पार करने में सहयोगी हो जाए, जहां शर्त नहीं चलती, जहां तर्क नहीं चलते, जहां सहज भाव से अपने सात तत्वों के प्रति, जो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, भले ही हम नहीं जानते उन सात तत्वों का स्वरूप, लेकिन श्रद्धान है कि हां यही मेरे कल्याण के लिए कारण है। ऐसा श्रद्धान आता है क्या अपने भीतर? आना चाहिए भाई। एक बार श्रद्धान अगर आ जाए तो ही जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है। जिंदगी भर भी अपन प्रयास करें तो अपन को इसी श्रद्धान के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया भर की चीजें मिल जाने के बाद भी अगर ये चीज नहीं मिली तो व्यर्थ है। अज्ञेय जी ने अपने संस्मरण में लिखा, सच्चिदानंद वात्स्यायन उनका नाम था, अज्ञेय कहने लगे थे उनको, मिलते बहुत कम थे, कहां है यही पता नहीं रहता था, तो लोगों ने धीरे धीरे कहने लगे तो अज्ञेय हैं, उनका पता नहीं कहां होंगे कहां नहीं होंगे, ऐसा नाम रख दिया था। बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उनके जीवन का संस्मरण, वो एक बार कश्मीर की यात्रा पर गए तो वहां पर जाते समय रास्ते में एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि देखो उस समय ऐसे इंटरनेट वगैरह और आवागमन के साधन तो थे नहीं, आदमी से ही अपना काम चलाते थे लोग। सुकेन ले तुम आगे गांव में जा ही रहे हो और हमारे मित्र हैं वहां पर, उनका कुछ पैसा देना है सो तुम दे देना, हम तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, 3,000 रुपये उस समय सन 30 में क्या वैल्यू थी 3,000 की? आज के 3 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। 3,000 रुपए उनके हाथ में दे दिए ना, लिखा पढ़ी ना अंगूठा लगवाओ कि हमने दए तुम्हें, वो तुम दे दी उते हम उनसे भी फोन करके पूछें कि दए के नहीं। इतना अविश्वास आज डेवलप हो गया उस ज्ञान के चलते। ज्ञान ने हमारे भीतर अविश्वास पैदा किया या कि विश्वास? बिना किसी लिखा पढ़ी के 3,000 रुपए देने वाले ने दे दिए और रखने वाले ने भी पॉकेट में रख लिए और चले मोटर में, बस में। बस चालू होने वाली थी, उतने में एक 10-11 वर्ष का बेटा भागते हुए हांफते हुए आया और उसने अज्ञेय जी से कहा कि अंकल, वो जो हमारे मालिक ने आपको 3,000 रुपए दिए ना, वो देना नहीं है वहां पर, वो वापिस मंगाए हैं उन्होंने। ठीक है, मंगाए हैं वापिस, नहीं देना तुमने कहा तो देना, इसलिए मैंने रख लिए थे, नहीं देना है तो ले लो अपने वापिस। निकाले 3,000 रुपए और उस 11 वर्ष के बेटे के हाथ में सौंपे। जय जिने। लेकिन जितने लोग देख रहे थे इस क्रिया को भी सब चिल्ला पड़े, क्या करते हो, गए भी तो पानी में 3,000 ने जा पूछी कि कौन किरण का आओ, कौन ने मंगाए हैं, कहा है कहा नहीं है। इतना विश्वास कर लिया आपने उस 11 वर्ष के बेटे पर, 3,000 रुपए ऐसे ही दे दिए, गए वो तो डूब गए। अज्ञेय जी ने इतना सब सुनने के बाद बड़ी मैंने उपदेश लोगों ने 15 मिनट तक उनको दिए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि यदि मैं आज 3,000 रुपए के पीछे, मैं 3,000 रुपए में एक एक पाई कमा करके भी चुका दूंगा, लेकिन यदि इस 3,000 रुपए के पीछे अपना विश्वास खो देता तो शायद जिंदगी भर मुझे विश्वास प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ विश्वास है जिससे कि ये संसार और संसार से पार होना दोनों ही आसान है। लेकिन अपन तो संदेह कर लेते हैं एक एक चीज में। मोक्ष मार्ग जो बताया आचार्यों ने उस पर भी संदेह हो जाता अपन को कभी कभी, का पता है सही के नहीं है। अपनो तो जोन अच्छो है, दुकान खुली है, पैसा कमा रहे हैं अपन, और घर गृहस्थी है वो ही अच्छो है, इनमें कब का धरो। वैसे ही तो दुखी हैं जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं और अपन कायकों में फंसो, ऐसा भाव आ जाता अपने भीतर की नहीं है श्रद्धान या संदेह है विश्वास नहीं। अपन को देखना चाहिए कि हमारी इन क्रियाओं के द्वारा तो यही प्रदर्शित हो रहा है, हम भले ही गीत गाएं श्रद्धान के और विश्वास के, लेकिन मैं अपने भीतर कितना अविश्वास और कृतता अश्रद्धा भाव लेकर के और अपना जीवन जी रहा हूं। भाई अपन को ऐसा विश्वास जो संसार में अपन बना के चलते हैं उसे ही थोड़ा बदल करके और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, उनके द्वारा कहे गए सात तत्वों के प्रति वैसा ही अनुराग हो, जिससे अपना अनुराग होता है वो कि सब बातें मनत है, सब सुनत है कि नहीं सुनत, ये बताओ आप, सामान्य सी चीज है। जिससे जितना अनुराग होगा, जितना लगाव होगा, उसकी बात टाल नहीं पाएंगे। देखो ऐसा अपन संसार में देखते हैं, लेकिन अपना सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग है, प्रेम भाव है, लेकिन उनकी कितनी बातें मानते अपन, कितनी टालते रहते, बताइए। जिन वाणी में क्या चीज भक्ष है, क्या अवक्ष है, क्या प्रयोजन बाण है, क्या प्रयोजनी है, क्या प्रयोजनी है, ये सब अपन को बता दिया। भगवान की वीतरागता अपन को रोज उपदेश देती है कि भैया लड़ो झगड़ो ने, राग द्वेष ने करो, देखो हम कैसे बैठी वीतरागी, ये संदेश रोज दे रहे हैं। उनके प्रति अपना अनुराग भी है, लेकिन जरा गौर करें कि क्या वास्तविक अनुराग है। ये वास्तविक अनुराग होता जैसे कि किसी व्यक्ति का किसी कलाकार, फिल्म के कलाकार से बहुत अधिक अनुराग हो, जिसको वो अपना फेवरेट मानता हो, उसी के जैसे कपड़े पहनेगा, उसी की जैसी टोपी लगाएगा, उसी के जैसे हेयर स्टाइल, उसी के जैसे चलना फिरना सब कुछ करता है कि नहीं, बताओ। लेकिन अपन अपना यदि भगवान के प्रति अनुराग है तो थोड़ी देर को तो भगवान जैसे बनने की नकल तो करें, लेकिन उतना भी नहीं अपने जीवन में आ पाता है, उतनी वीतरागता भी नहीं आ पाती है कि हाँ थोड़ी देर तो हम दिन भर में इस राग द्वेष के प्रपंच से बच करके वीतरागता का अनुभव करेंगे। भैया अपन तो सिर्फ इतनी ही तैयारी कर सकते हैं कि अपने भीतर मैं और मेरेपन का दबाव कम हो, जिससे कि श्रद्धा आपो आप उत्पन्न हो। बाकी तो सब ये समझने और समझाने की चीजें हैं, श्रद्धा अपने आप रिस्पांस देती है। जिसके भीतर श्रद्धा है उसे अपने आप बहुत सारी चीजें जैसे कि निश्चिंतता, तन्मयता, दृढ़ता, ये सब आपो आप मिलने लगती हैं। जिनके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे भीतर दृढ़ता आवे, हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हमारे भीतर कंसंट्रेशन तन्मयता बढ़े, हमारे भीतर निश्चिंत होकर के जीवन जीना आ जावे, लेकिन ये सब चीजें श्रद्धा के आने पर ही मिलती हैं। देखो सुदामा के पास जब कुछ नहीं था, उस समय चावल बांध करके और श्री कृष्ण के पास गए थे, थोड़े से चावल हैं लेकिन श्रद्धा बहुत है, उस श्रद्धा का रिस्पांस मिला और वो चावल स्वर्ण के हो गए, और उनके लिए कितना लाभ हुआ, चावल की वजह से हुआ जी नहीं, हमारे भीतर जो श्रद्धा थी उसका हमें अपने आप रिस्पांस मिला। अपन देखते हैं सामान्य रूप, सामान्य रूप से भी व्यक्ति देखते हैं, किसी को कमती, किसी को अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है, तो कम और ज्यादा लाभ दिखता जरूर है, लेकिन श्रद्धा कम और ज्यादा जिसकी जैसी होगी उसके अनुसार उसको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अपन ये देख करके कि इनसे ज्यादा है, महाराज जी को इन पे आशीर्वाद ज्यादा है, इन पे कमती है, इनको ज्यादा चाहत, इनको कमती चाहत, ये भैया अपने भीतर की श्रद्धा देखो पहले कि किसके भीतर कितनी श्रद्धा है, उसको उतना ही रिस्पांस मिलेगा, अपने आप मिलेगा, कोई देता वेता नहीं है, अपन तो प्रणाम बाद में करेंगे, पहले जा देखेंगे कि आशीर्वाद दे रहे कि नहीं। नमोस्तु महाराज, ले पहले आशीर्वाद चाहने की अपनी नमोस्तु निवेदित करो। सो नहीं, नमोस्तु तो हम बाद में करेंगे, पहले आप आशीर्वाद दे रहे कि नहीं। अपन फल पहले चाहते हैं, अपना कर्म बाद में, अपनी श्रद्धा बाद में व्यक्त करेंगे, लेकिन श्रद्धा का क्या फल होता है ये हमें पहले चाहिए। भैया श्रद्धा फल देती है, लेकिन वास्तविक श्रद्धा हो तो अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि अपन को भी ऐसी श्रद्धा जिसका कि अपन फल चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण, वैसी श्रद्धा अपन को प्राप्त हो। एक छोटा सा उदाहरण है, कितना विश्वास संसार में होता है। कई बार सोचता हूं कि ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति क्यों नहीं उमड़ती है। बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने का मन तो हो जाएगा, अपने मन का नहीं होगा। सो कि ऐसो है, ऊंसो है, जो ठीक नहीं है वो फलानो है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका अपन जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे। श्रद्धालु होगा तो ही श्रद्धा की आंख से देख करके उसमें दोष न देख करके अच्छाइयां देखेगा। अभी हम रास्ते से जा रहे थे तो हमने यही बात कही कि देखो वीतराग मुद्रा एक ही है, लेकिन कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर रहा है, कोई व्यक्ति वीतराग मुद्रा देखकर अपना मुंह इस तरफ कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजा कर रहा है, जा रहे हैं, एक ही मुद्रा है तो मुद्रा वीतराग, लेकिन उस मुद्रा के माध्यम से किसी को घृणा, ईर्ष्या और द्वेष का भाव आता है और किसी को अनुराग उत्पन्न होता है और श्रद्धा उत्पन्न होती, हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। ये क्या चीज है? ये अपने भीतर के भाव हैं। जिसने जिस प्रकार के भाव बनाए, जैसी श्रद्धा प्राप्त करी, उसको बाहर वैसा ही दिखेगा, अच्छा या बुरा। क्या हुआ, पानी का जहाज चलता था, उस पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, भाई बहन थे दोनों, माता पिता नहीं रहे थे उनके। भाई थोड़ा नटखट था, बहन थोड़ी बड़ी थी, समझदार थी, तो दोनों जन यात्रा जहाज में महीनों से कर रहे थे। अचानक जहाज में हल्ला हुआ, अनाउंस हुआ कि भाई तूफान बहुत तेज है, जहाज के डूबने का अंदेशा है, सब लोग अपने अपने भगवान को याद कर लो, ऐसे समय पर तो अब जबकि विपत्ति सामने है। बहन सुनकर के घबराई, उसने आजू बाजू देखा, भैया तो कहीं पर नहीं है, उसको सुरक्षा का भाव अपने सुरक्षा से ज्यादा